Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Praya Suvabhadresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakter Bhavati Naishthike Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam Askandacha, Adhyay Vara, Shlok Sankhya Sola.
आप हरि कीर्तन प्रभु ट्रांसलेशन करें प्रभु जी यू अंडरस्टैंड हिंदी यू नो यू अंडरस्टैंड हिंदी ओके
पश्चमा निर्जितम शत्रु विक्रायुध भुजम मृधे घटामानम यथाशक्ति तव प्राण जिहिर्षया पश्यमाम निर्जितम शत्रु विक्रायुध भुजम मृधे घटमानम यथाशक्ति तव प्राण जिहिर्षया पश्यमाम निर्जितम शत्रु विक्रायुध भुजम मृधे घटमानम यथाशक्ति तव प्राण जिहिर्षया पश्यमाम निर्जितम शत्रु विक्रायुध भुजम मृधे घटमानम यथाशक्ति तव प्राण जिहिर्षया पश्यमाम निर्जितम शत्रु विक्रायुध भुजम मृधे घटमानम यथाशक्ति तव प्राण जिहिर्षया पश्यमाम निर्जितम शत्रु विक्रायुध भुजम मृधे घटमानम यथाशक्ति तव प्राण जिहिर्षया
माताजी पढ़िए हम लोग वास्तव में न स्त्री हैं न पुरुष हैं तो सही है बोले उन्होंने चरितार्थ किया है कि हम देह नहीं हैं हम स्त्री नहीं हैं न हम पुरुष हैं कोई न स्त्री है न कोई बेटे एक प्रकार का आवरण है कि नहीं कोई माताजी में पढ़ सकती हैं कोई नहीं पढ़ धन्यवाद आप लोगों को विशेष धन्यवाद है
पश्चा देखो माम मुझको निर्जितम पहले से पराजित शत्रु हे शत्रु विक्रण काट डालो आयुध मेरा हथियार भुजम तथा मेरी भुजा मृधे इस युद्ध में घटमानम अभी प्रयत्नशील यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार तब तुम्हारा प्राण जीवन जिहिर्षया ले लेने की इच्छा से अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अरे मेरे शत्रु जरा मेरी ओर देख, मैं पहले ही परास्त हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजा पहले से ही खंड खंड हो चुकी है। तुमने मुझे पहले से जीत रखा है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ, अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध प्रारंभ करो। वृत्रासुर कह रहे हैं, इंद्र हतोत्साहित हो गए थे तो उनको उत्साह वर्धन करने के लिए वृत्रासुर इंद्र को कहें कि तुम मारो, मैं तो पराजित हो चुका हूं, उनकी भुजाएं कट चुकी हैं, उनके हथियार खंड खंड हो चुके हैं। लेकिन युद्ध में परिणाम की अपेक्षा न रखते हुए वृत्रासुर फिर भी युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। तात्पर्य, वृत्रासुर इतना महान एवं बलशाली था कि वस्तुतः वह इंद्र के गुरु की भूमिका निभा रहा था। श्री राधारास बिहारी जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, निताई गौर सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की। वृत्रासुर इतना महान एवं बलशाली था कि वस्तुतः वह इंद्र के गुरु की भूमिका निभा रहा था। वह यद्यपि हारने ही वाला था, किंतु इंद्र का शत्रु होने के नाते उसने इंद्र को मारने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रकार उसने अपना कर्तव्य निभाया। मनुष्य को चाहिए कि यह जानते हुए भी कि क्या परिणाम होगा, सभी परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाए। बहुत सुंदर श्लोक है, पश्चिमाम निर्जितम शत्रु विक्रणायुध भुजम मृधे, घटमानम यथाशक्ति तव प्राण जिहिर्षया। अरे मेरे शत्रु जरा मेरी ओर देख, मैं पहले से ही परास्त हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजा पहले से ही खंड खंड हो चुकी है। तुमने मुझे पहले से जीत रखा है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ, अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध प्रारंभ करो। युद्ध भूमि में जब दो शत्रु लड़ाई में आमने सामने होते हैं तो हर एक का यही प्रयास होता है कि हम विजय प्राप्त करें, हम किसी भी तरह से अपने शत्रु को परास्त करें। लेकिन यहां पर ठीक उसके विपरीत बात है। इंद्र भय से युद्ध में स्थिर हो गए थे, युद्ध करने का साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि वृत्रासुर भुजाओं के कट जाने पर भी विशाल पर्वत की तरह उसके मुख मानो आकाश और पृथ्वी को घेर कर रखे थे। वृत्रासुर एक बार इंद्र को निगल भी गया था, ऐरावत सहित मुंह में ले लिया था, इतना उसका विशाल मुख था कि लग रहा था कि पूरे आकाश को ही ग्रस लेगा, सूर्य चंद्रमा को भी ग्रस सकता, इतना विशाल। पूरे आकाश को जो घेर ले उसको आवृत कहते हैं, पूरे दिशाओं में उसके शरीर भर गए थे, इसलिए उसका नाम है वृत्त। वृत्रासुर महान भक्त एवं बलशाली योद्धा थे, परिणाम की परवाह किए बिना युद्ध करना चाहते थे। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भूर्मा न संगेस्तु कर्मणि, सही है ना। हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है। तो वृत्रासुर बिल्कुल भगवद गीता के आधार पर युद्ध भूमि में केवल युद्ध की इच्छा कर रहे थे, परिणाम क्या होगा यह नहीं सोच रहे थे। और ऐसे वृत्रासुर समझ रहे थे कि हमारी पराजय होगी, हम पराजित हो चुके हैं, क्योंकि उनके हथियार भी कट गए थे, उनकी भुजाएं भी कट गई थी, जानते थे कि हमारी पराजय हो चुकी है। पश्चिमाम निर्जितम शत्रु, इंद्र को कहा कि अरे शत्रु मैं तो पराजित हो चुका हूं। निर्जितम, निर्जितम जीतम मतलब जो जीतने वाला है, निर्जितम मतलब जो पराजित होने वाला है या पराजित हो चुका है। निर्जितम, मैं निर्जितम हूं और तुम जीतम हो, तुम तो विजयी होने वाले हो, क्यों नहीं हथियार उठा रहे हो, युद्ध करो। मैं इस अवस्था में भी युद्ध करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूं, तो हथियार उठाओ। तरह से प्रकारांतर से इंद्र को उत्साहित कर रहे थे। क्यों उत्साहित कर रहे थे, क्यों मरना चाहते थे, वृत्रासुर क्यों मरना चाहते थे? वो जानते थे कि मृत्यु जो है आज नहीं तो कल होने वाली है। आद्यम युगांतरेवा, मृत्यु आज हो या युग पर्यंत बाद हो, मृत्यु एक दिन होने वाली है। भौतिक संसार में भौतिक शरीर प्राप्त करने के बाद मृत्यु होती है। भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार हरते न त्वम शोचित उमर्हसि। गीता को सही में वृत्रासुर ने समझा है और गीता के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। अर्जुन बल्कि युद्ध करने से कतरा गए थे, युद्ध भूमि से भाग रहे थे। वो परिणाम पर विचार किए कि युद्ध में हमारे सब संबंधी मार दिए जाएंगे, मैं कुल के वयोवृद्ध भीष्म पितामह पर बाण कैसे चलाऊंगा, जो सदा सर्वदा पूजनीय द्रोणाचार्य के ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा, गुरु पुत्र अश्वत्थामा को कैसे मारूंगा जो हमेशा से हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है। भगवान आगे बताते हैं कि गुरु द्विज देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव द्विज गुरु हमेशा पूजनीय होते हैं, उनको कैसे बाण से मारूंगा। जिनके छत्र छाया में हमने युद्ध विद्या सीखा है, जो मुझे पक्षी जैसे पंख से अपने बच्चों का पालन करते हैं, वैसे हम अजात पक्षा थे। हमारे पिता मर गए थे, हमारी माँ विधवा हो चुकी थी। अर्जुन सोच रहे थे कि मैं ऐसा कृतघ्न कैसे बनूंगा जो हमारे लिए इतना किया है। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह की कृपा से पांडव और विदुर की कृपा से सुरक्षित थे। द्रोणाचार्य सबसे अधिक प्रेम करते थे अर्जुन से, अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक स्नेह करते थे अर्जुन से। पुत्रवत शिष्यवत जिनको स्नेह दिए थे, जिनको सारी विद्या सिखाए थे, वो अर्जुन सोच करके कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे थे कि मैं कैसे इनको बाण से मारूंगा। हम नवजात थे, हमें लक्षागृह से, हमें विषपान से, अनेक दमनकारी नीतियों से, दुर्योधन और धृतराष्ट्र की नीतियों से हमें जिन्होंने बचाया है। वास्तव में पांच पांडव भीष्म पितामह द्रोणाचार्य विदुर जी इनके कृपा से वो लोग सुरक्षित बचे थे। विदुर जी के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं भीष्म पितामह के प्रति। भीष्म पितामह उनको धृतराष्ट्र राज्य सत्ता से, ये राज्य की जो सुविधा मिलती उसे वंचित कर देना चाहते थे धृतराष्ट्र। लेकिन भीष्म पितामह कहते थे कि नहीं, उनका भी पालन जो है राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। उन्हीं बातों को अर्जुन याद करके कह रहे थे कि मैं कैसे बाण चलाऊंगा, ये हमारे हमेशा पूजनीय हैं, कुल के वयोवृद्ध हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहे कि अब युद्ध नहीं करोगे, इस विषम परिस्थिति में युद्ध से अगर भाग जाओगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। कुतस्तवा कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुनम। यह अकीर्ति देने वाला है, अपयश देने वाला है और स्वर्ग को भी नहीं देने वाला है। अस्वर्ग्यम अकीर्ति, अगर इस समय युद्ध से पलायन करते हो तो तुम्हारी बहुत अपकीर्ति होगी, तुम्हें लोग ललकारेंगे कि बहुत कायर है। क्षत्रिय अगर युद्ध से भाग जाते हैं तो उसे अच्छा है मर जाना, युद्ध में वीरतापूर्वक मर जाना क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर है। क्षत्रिय युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। तो भगवान कहे कि तुम क्षत्रिय हो, कुतस्तवा कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर ये कस्मल कहां से आ गया, कुतस्तवा कहां से, कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में
तुम्हारे अंदर अज्ञान कहां से आ गया? ज्ञान यह है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जैसे वृत्रासुर कह रहे हैं। वो युद्धभूमि में पराजित हो चुके थे, वो जानते थे कि हमारी पराजय होने वाली है, फिर भी युद्ध के लिए उत्साहित थे। तो भगवान कहे कि ये अनार्यों के लिए ठीक नहीं है, आर्यों के लिए ठीक नहीं, अनार्यम जो आर्य नहीं है उनके लिए ठीक है कि युद्ध से भाग जाते हैं। क्षत्रिय का उत्सव क्या है? युद्ध है। जैसे भक्त लोग उत्सव मनाते हैं तो बहुत मालपुआ बनता है, रसमलाई बनता है, अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, लेकिन वीरों का उत्सव क्या होता है? युद्ध है। रणभूमि में जो वीरता दिखाता है वही क्षत्रिय का उत्सव है। और जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है तो वो तो बिल्कुल उसका हर चीज खत्म हो जाता है। जो क्षत्रिय युद्ध में मर जाता है तो स्वर्ग प्राप्त करता है, विजयी होता है तो पृथ्वी का ऐश्वर्य भोगता है। तो भगवान कहे अगर इस तरह से डर कर भाग जाओगे तो तुम्हारी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें यह श्री लक्ष्मी नहीं मिलेगी। से हिंदी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, मोती चुंगने वाले मोती समुद्र में लेने वाले समुद्र में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। आ कुछ लोग डर करके किनारे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि डूबूं कि न डूबूं। तो जो भय से नहीं जाते हैं तो मोती नहीं प्राप्त करते हैं, जो समुद्र में साहस करके डुबकी लगाते हैं, गहरे पानी में जाते हैं तो मोती प्राप्त करते हैं। कुछ जोखिम उठाना पड़ता है, पहले ही हम परिणाम पर विचार कर लेंगे तो क्या आगे बढ़ेंगे, हमें फल पर विचार नहीं करना है, भगवान कहते हैं। तो हिंदी में बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा जो प्रयास करेगा उसी को प्राप्त होगा ना, जिन ढूंढा तिन पाइया और गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरे रहे किनारे बैठ। जो बौरा अगर डर करके कि मैं डूब जाऊंगा क्या परिणाम होगा, मोती मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किम कर्तव्य, जैसे अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। तो जो समुद्र में डुबकी लगाएगा वही जो जितना गहराई में जाएगा उतना ही प्राप्त करेगा। तो अर्जुन युद्ध से प्लान करना चाहते थे, भगवान कहे कि नहीं तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, परिणाम पर विचार मत करो कि क्या होगा, अब क्या होगा इसके बाद, यह नहीं विचार करना कि अब क्या होगा। तो यहां प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि वृत्रासुर इंद्र के गुरु की भूमिका निभा रहे थे कि तुम क्यों विचार कर रहे हो कि क्या होगा। इंद्र के गुरु की भूमिका निभा रहे थे वृत्रासुर। वह यद्यपि हारने ही वाले थे किंतु इंद्र का शत्रु होने के नाते उसने इंद्र को मारने का भरसक प्रयत्न किया, फिर भी प्रयास कर रहे थे। हमें प्रयास करना चाहिए, जो भी हो आदमी को, जैसे जप करने के लिए मंगला आरती आने के लिए प्रयास करना चाहिए। कभी बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमसे भक्ति नहीं होने वाला है, हमसे मंगल आरती नहीं होने वाला है, और बिल्कुल पराजित हो जाते हैं। प्रयास करना चाहिए, जैसे उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। भगवान गीता में कर्म करने के लिए कहते हैं कि जो तुम्हारी स्थिति है कर्म करो। तो वृत्रासुर युद्ध कर रहे हैं, परिणाम पर विचार नहीं कर रहे हैं। अगर परिणाम पर विचार करते तो उनको मालूम था कि हमारी पराजय होगी। चूंकि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है, अतः मनुष्य को यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु तथा सुख दुख से
निश्चिंत रहकर समभाव बनाए रखना चाहिए। हर चीज परम भगवान की इच्छा से घटित होता है। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। अतः मनुष्य को जस अपयस, हार जीत, जीवन मृत्यु, सुख दुख में निश्चिंत रहकर समभाव बनाए रखना चाहिए। उसी को ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, सोचती न कांक्षति। वृत्रासुर बिल्कुल ब्रह्म स्तर पर थे, ब्रह्म, और इंद्र देह भूत थे, और वृत्रासुर ब्रह्मभूत, देह भूत ब्रह्मभूत। हम लोग देह के स्तर पर देह भूत हैं। इंद्र भी देह भूत थे, देह के विषय में सोच रहे थे, लेकिन वृत्रासुर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति। आद्यम मरण या जुगंतरे वा, वृत्रासुर जानते थे कि आज भी मृत्यु हो तो कोई बात नहीं। बिल्कुल भगवान के भावना में, कृष्ण भावना में स्थिर थे। जो कृष्ण भावना में स्थिर होता है तो उसे भय नहीं होता है, कभी भी मर सकते हैं। भक्त मरने से नहीं डरते हैं, मृत्यु से भय नहीं खाते हैं, बल्कि मृत्यु की ही पराजय हो जाती है। प्रभुपाद जी ने किताब लिखा है मृत्यु की पराजय। भक्त लोग मृत्यु से पराजित नहीं होते हैं, मृत्यु को ही पराजित कर देते हैं। श्री अजामिल ने मृत्यु को पराजित कर दिया। मृत्यु आई थी और मृत्यु उल्टे पांव भाग गई। जो भक्त हैं मृत्यु को पराजित कर देते हैं। या ज्ञान को ज्ञान के तलवार से काट देते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ज्ञान की तलवार, आपको क्या चाहिए, तलवार चाहिए कि कलम चाहिए, दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार। तलवार लेंगे निताई माधव प्रभु की, कलम चाहिए। ज्ञान की तलवार चाहिए जिसे हम संशय रूपी रज्जू को काट सकें। एक भक्त कह रहे थे कि दो कलम है और तलवार है, चुनाव करिए आपको क्या चाहिए, दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार। कहते हैं कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, और दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कमल भले छोटी है लेकिन वो दिल और दिमाग में भी हलचल पैदा कर देती है। जो तलवार से काम नहीं होता है वो कलम से हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कलम के बदौलत पूरे विश्व में क्रांति ला दिए। उनकी किताबें उनके कलम से झरने की तरह निर्झरित होकर के संसार में कितना झंझावात पैदा किया है। तो कलम जो है तलवार से श्रेष्ठ है, यानी ज्ञान जो है बल से श्रेष्ठ है। किसके पास बल है, बुद्धि जस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धि जस्य बलम तस्य, एक संस्कृत में कहानी हम लोग पढ़े थे, सुबह आध्यात्मिक कहानी था कि एक खरगोश जो है जंगल में एक शेर रहता था। जंगल का राजा शेर होता है, जंगल का राजा शेर होता है। तो शेर जो है अपने भोजन के लिए प्रतिदिन पशुओं को मारता था, तो कई पशुओं को मार देता था। तो जंगली पशुओं ने शेर से मीटिंग किया कि भाई आप जितना जरूरत है उतना ही मारिए, अनावश्यक पशुओं को मत मारिए। या ऐसा हम लोग करते हैं कि आपको जितना जरूरत है एक दो पशु हम लोग आपके पास भेज देंगे, आप खाकर निश्चिंत रहिए। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकाले जंगली जानवर कि एक जानवर इनके पास भेजा जाएगा, प्रतिदिन एक जानवर को भेजा जाएगा, वो खा करके अन्य पशुओं को नहीं मारेंगे। इस तरह का जुरिस्डिक्शन जो है पास हुआ, ऐसा कमीशन पारित हो गया कि अब जंगली जानवरों को नहीं मारना है, जो भोजन भर जितना चाहे उतना भेज दिया जाएगा।
तो एक दिन खरगोश की बारी आई। प्रतिदिन अपने शेड्यूल के अनुसार जानवर जाते थे, एक दिन छोटा खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत अनमनस्क, बड़े दुखी भाव से जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, विलंब करके जा रहा था कि मरना तो है ये है, अरे पहले जाएंगे या देर से जाएंगे तो मरेगा ही, तो जितना देर से जाए उतना समय हमारे लिए रहेगा। तो विलंब से गया, और शेर जो है ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बहुत भूखा था, बहुत भूखे में, भूखे आदमी को गुस्सा बहुत तेज होती है, भूख जब बढ़ती है तो गुस्सा भी आता है, तो शेर बहुत गुस्से में था। शेर ऐसे ही बहुत गुस्सैल होता है, तो खरगोश को रास्ते में देखा आते हुए, मन ही मन सोचा एक तो छोटा प्राणी है वो भी लेट आया, ये ब्रेकफास्ट भर भी नहीं है, लंच कहां से होगा, वो भी लेट आया है, ब्रेकफास्ट के समय ना आकर लंच के समय में आ रहा है, वो भी थोड़ा ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा क्या है शेर के आगे एक खरगोश का भोजन क्या है कुछ नहीं है। खरगोश बहुत, अरे खरगोश तो डरा था, प्रणाम किया, नमस्ते जंगल के राजा साहब आपको नमस्कार है। शेर ने डांट कर कहा कि विलंब क्यों किया, व्हाई यू आर लेट। बोला महाशय इस जंगल में एक दूसरा राजा बनकर आ गया है, आप सोए रहते हैं, एक दूसरा राजा आ गया है, वही हमारा ट्रैफिक जाम कर दिया था और कहा कि मैं राजा हूं आज से, कहां जा रहे हो, वही रोक कर रखा था, बहुत आरजू मिन्नत करने के बाद छोड़ा है, आपके पास मैसेज देने आया हूं। मैंने कहा कि उनको मैसेज दे देने दो, आप राजा है बहुत खुशी की बात है। तो शेर ने कहा कि कहां दूसरा राजा आ गया, राजा तो मैं ही हूं, कौन दूसरा राजा है बताओ दिखाओ। खरगोश ने कहा चलिए सरकार दिखाता हूं, ले गया और कुएं पर कहा कि देखिए आपके भय से वो कुएं में छुपा हुआ है। शेर ने कुएं में देखा तो सही में शेर दिखाई दे रहा था, उसका प्रतिबिंब, तो जोर से दहाड़ मारा तो उधर से भी प्रतिध्वनि हुआ, दोनों तरफ से हो रहा था तो शेर समझा सही में हमारे भय से छुप गया है, दहाड़ मारते मारते जंप कर गया कुएं में। तो उस दिन से जंगल का भय समाप्त हो गया। बुद्धि जस्य बलम तस्य, खरगोश के पास बुद्धि सा बुद्धि से काम किया, जबकि छोटा प्राणी था, बल नहीं था, बलवान नहीं था। तो बुद्धि जस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, इसलिए कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली कलम जो है, इसमें ज्यादा शक्ति है, लोगों के दिल को दिमाग को झकझोर देती है, उसको जीत लेती है, बस में कर लेती है। तलवार का जो साम्राज्य होता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता है, और जो कलम से जो प्रेम से जो सत्ता चलाता है वो बहुत टिकाऊ होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। वृत्रासुर यहां पर इंद्र को कह रहे हैं कि आप युद्ध करिए, फल पर विचार मत करिए। हम लोग फल पर विचार करते हैं कि क्या होगा, हम ब्रह्मचारी बन गए आगे क्या होगा हमारा, हमारे पास कौड़ी छदाम भी नहीं है, एक फ्लैट भी नहीं है वृंदावन में, क्या होगा हमारा लोग कई कई ब्रह्मचारी लोग कहते हैं हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, होगा क्या जो होने वाला है वो होगा ही, उसको रोक सकते हैं आप? अगर हम चाहेंगे भी जो होने वाला है उसको टाल नहीं सकते, वो होगा ही। हम लाख प्रयास करें जो होने वाला है वही होगा, जो नहीं होने वाला है उसके लिए क्या सोच करना है। वृत्रासुर यह कह रहे थे कि हम मरने ही वाले हैं तो सोचना क्या है, हम मरेंगे ही, हम कितना भी सोच लें कि अरे हमको नहीं मरना चाहिए, हमको नहीं मरना चाहिए, हम कितना भी प्रतिकार करें, मृत्यु का कोई कितना भी नलीफाई कर ले, लेकिन मृत्यु अवश्य है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। वृत्रासुर गीता के अनुसार प्रवचन कर रहे हैं इंद्र के लिए।
इंद्र को गीता का प्रवचन सुनाते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार हरते न तुम सोची तुमर, क्यों सोच कर रहे हो? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी ही मृत्यु होती है। जन्म किसका होता है? शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छिदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम कलेदयन त्यापो न शोषयति मारुत। ऐसा ज्ञान युद्ध भूमि में दे रहे थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे। वृत्रासुर करे कि तुमको कौन मार सकता है? आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, कोई भी शस्त्र से आत्मा को काट नहीं सकते। नैनम छिदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, आग में भी आत्मा को नहीं जलाया जा सकता है। न शोषयति मारुत, हवा उसको सूखा नहीं कर सकता है, न कले दयन त्यापो न आग जला सकता है, न पानी गीला कर सकता है। तो क्यों सोच कर रहे हैं हम लोग? क्यों सोच कर रहे हैं? शरीर के लिए, शरीर तो मरने ही वाला है। जो मरने वाला है उसके लिए हम लोग सोच करते हैं, जो हम मरने वाले नहीं है उसके लिए हम सोच नहीं करते हैं। अशोचया न शोचस्तम प्रज्ञा बाधांश भाष से गता सुन गता सुन नानु शोचन्ति पंडिता। वृत्रासुर वास्तव में इंद्र के अपेक्षा बहुत महान पंडित थे, महान भक्त थे और रियलाइज सोल थे, ब्रह्मभूत, इसलिए इस तरह की बात वो कह रहे हैं युद्ध भूमि में। वो भी उनका शरीर छत बिछत हो चुका था, उनके अंग प्रत्यंग काट दिए गए थे, फिर भी उस अवस्था में जो ब्रह्मभूत अवस्था में जो योगी लोगों के लिए भी दुष्कर है, दुष्कर्म, शरीर में अनेक पीड़ाएं हो रही थी, फिर भी कृष्ण भावना पर अडिग थे, कृष्ण भावना में स्थिर थे, जम गए थे। एक महात्मा बोले थे कि कृष्ण भावना में जम जाना चाहिए, रम जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और अंत में जम जाना चाहिए आइस की तरह, कि बिल्कुल हिल उसमें से तनिक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो वृत्रासुर कृष्ण भावना में बिल्कुल आइस की तरह, चट्टान की तरह जम गए थे। उस परिस्थिति में भी बिल्कुल आहू नहीं कर रहे थे, कोई इंजेक्शन दे करके किसी को फिट आ जाता है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर आए चेचक के लिए, तो बहुत सारे लड़के भाग गए डर से, इंजेक्शन लेने से कोई आगे आ नहीं रहा था, इंजेक्शन लेने के इतना भय हो रहा था। हम लोग इंजेक्शन से डर जाते हैं, लेकिन वृत्रासुर देखिए उनका शरीर सब काट दिया गया है, फिर भी आह वो नहीं कर रहे थे। हाँ बहुत कराहते हैं, आह ओह कहते हैं ना, लेकिन वृत्रासुर कितना स्थिर थे, स्थिर धीर मुनिरुच्यते, इसी को मुनि कहते हैं, जिसका मन जो है युद्ध भूमि में भी उस शरीर के छत बिछत होने पर भी जिनका मन बिल्कुल कृष्ण भावना में अडिग था, रम गया था, जम गया था, अंत में थम गया था। ऐसी मृत्यु श्रेयस्कर भी है, मरना ही है तो कृष्ण भावना भावित मरना चाहिए। तो वृत्रासुर चाहते थे कि ऐसी सुंदर मृत्यु को क्यों मैं त्यागूं, ऐसी मृत्यु का वरण करना चाहिए। जब भगवान श्री राम ने बाली को छुप करके मारे थे, सात ताल वृक्ष के पीछे छुपकर बाली को मारे थे, सुग्रीव को भगवान राम ने कहा था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं मित्र, तुम्हारे कार्य में जरूर मदद करूंगा। मित्रक दुख रज मेरु समाना, जो मित्र के दुख को धूल के समान, दुख को भी सुमेरु के समान समझता है और अपने सुमेरु के समान दुख को धूल के समान समझता है, वही मित्र है। भगवान श्री राम मित्रता का एक उदाहरण है। बंदरों से भी मित्रता किए तो मित्रता का निर्वाह किए, सुग्रीव बंदर जाति के थे, लेकिन उनके साथ मित्रता की और कहे कि मैं अवश्य आपका साम्राज्य दूंगा और बाली का वध करूंगा, चाहे इंद्र ब्रह्मा शिव भी आ जाएंगे तो भी वो बच नहीं सकता है। तो बाली का जब वध किए मारे, तो मरते समय बाली ने कहा कि हे प्रभु, आपने क्यों मुझे मारा? आप तो समदर्शी हैं, आपके दृष्टि में सभी समान हैं, आपका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, सम सर्वेषु भूतेषु न मे दृष्टि न मे प्रिय। आगे चलकर कृष्ण गीता में उपदेश करेंगे, वो पहले ही बाली भगवान राम को उपदेश कर रहा है, आपका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, न आप किसी से द्वेष करते हैं न किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो आप क्यों मुझे इस तरह से मारे? मारे हूं मोहि व्याध की नाई, मुझे एक बहेलिए की तरह क्यों मारे छुप करके? आप तो समदर्शी हैं, समत्व हैं, आपका कोई सम सर्वेषु भूतेषु, आप समस्त प्राणियों के प्रति समान है। तो भगवान राम के पास कोई जवाब नहीं था, उत्तर नहीं था। एक उत्तर दिए कि देखो, मैं तुम्हारा वध इसलिए किया हूं कि जो नियम तोड़ता है, नियम इस भौतिक संस्कार, जो नियम है लॉ ऑफ नेचर, उसका पालन करना चाहिए, प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम को जो तोड़ता है वो दंडनीय होता है, दंड का भागी होता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्यम वर्तते काम कारत न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाना कार्य करता है, उसे न तो इस संसार में सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि मिलती है, न परम गति प्राप्त होता है। न च सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र नियम को तोड़ करके मनमाना कार्य करता है। तो बाली ने कहा कि मैं तो पशु जाति का हूं, पशु कोई नियम नहीं पालन करते हैं, पशु किसी को मार दे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए तो उसके लिए फांसी की सजा नहीं होती है। भगवान राम से बाली ने बड़ा अच्छा तर्क दिया, आप पशुओं के लिए थोड़े नियम बनाए हैं, तो नियम मनुष्यों के लिए है, देवताओं के लिए है, मनुष्य के लिए नियम है, पशु के लिए कोई नियम नहीं है। वो ग्रीन सिग्नल हो या रेड सिग्नल हो, पशु जा सकता है, ट्रैफिक पुलिस वाले फाइन नहीं मार सकते हैं। पशु आपको मार दे, आप कोर्ट में नालिश नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं कर सकते हैं, नियम पशुओं के लिए नहीं है। बाली ने कहा तो मैं बानर जाति का हूं, मेरे पास कोई आचरण नहीं है, न कोई नियम है, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमारे लिए नहीं है, बाली ने कहा। भगवान कहे कि देखो, जो अपनी भगनी, अपनी भाई की पत्नी, अपनी बहन पर जो कुदृष्टि डालता है, वह उसको पाप करने में कोई अपराध नहीं होता है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई सोई तास बधे कुछ पाप नहीं। अनुज बधु भगनी सुतनारी, अनुज बधु, सुग्रीव के पत्नी को बाली ने रख लिया था, सुग्रीव उनका छोटा भाई था, छोटे भाई की पत्नी भी अपनी पुत्री के समान होती है। अनुज बधु भगनी सुतनारी और बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी भी बहन की तरह होती है, पुत्री की तरह होती है। अपनी पुत्री, भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अनुज बधी भगनी सुतनारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई सोई तास बधे कुछ पाप न हो। तो इस पर बाली ने कहा कि ये पशुओं में थोड़े नियम है, पशुओं के लिए कहां नियम है, ये नियम तो आप जो बोल रहे हैं मनुष्यों के लिए है। तो भगवान कहे कि आप सही कह रहे हो, कहो क्या चाहते हो? कहो तो मैं तुम्हें अमर कर देता हूं, अचल करो निज राखो प्राणा, मैं तुम्हें अचल कर देता हूं, अपना प्राण रखो। तो बाली ने कहा कि हे प्रभु, अब बाली जो है भगवान के चरण का तक, नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूं, जब आप हमारे नेत्र के सामने हैं और आपका दर्शन करते अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो कितना श्रेयस्कर मृत्यु है, ऐसी मृत्यु जोगियों को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े जोगी भी इस तरह की मृत्यु की कामना करते हैं, लेकिन आप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, अगम्य है ध्यान से। मुनि लोग भी आपके ध्यान में धारण नहीं कर पाते हैं आपको। वही प्रभु आप मेरे नेत्र के सामने खड़े हैं, तो इस समय अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो कितना भाग्यशाली होंगे। कोई मरते समय किसी के सामने भगवान खड़े हों तो वो सबसे श्रेष्ठ मृत्यु है, वही सबसे श्रेष्ठ मृत्यु है। तो वृत्रासुर के मृत्यु मरना चाहते थे क्योंकि वो बिल्कुल कृष्ण भावना अपने जीवन के परम अवस्था में पहुंच गए थे। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाता है तो उसको मरने में कोई हिचक नहीं होता है। जो कोई पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसको मरने की कोई चिंता नहीं होती है और मरने की परवाह नहीं करता है। शुद्ध भक्त किसी भी संकटकालीन परिस्थिति में विचलित नहीं होता। शुद्ध भक्त किसी भी संकटकालीन परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इंद्र को आश्चर्य हो रहा था कि वृत्रासुर अविचलित भाव से भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो चुके थे, अविचलित। वृत्रासुर अविचलित भाव से भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो चुके थे, स्थिर हो चुके थे। क्योंकि अगर इस समय हम मृत्यु नहीं प्राप्त करेंगे तो पता नहीं आगे मन हमारा क्या होगा। आगे मन इस तरह के कृष्ण में मति लगेगी कि नहीं लगेगी। इस समय मन हमारा बिल्कुल भगवान में लगा है तो इस समय शरीर छोड़ना श्रेयस्कर है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरात्रम अदैव में विशत मानस राजहंस प्रायः प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विध स्मरणम कुतस्ते। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि प्रायः मृत्यु के समय कफ वात पित्त से गला भर जाता है। हे प्रभु, आपका स्मरण होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ही हमारा मन रूपी मानस राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में बंध जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरात्रम, कृष्ण आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में मन रूपी हंस हमारा बंध जाए तो भागेगा नहीं। कोई पालतू पक्षी होता है, पेट्स पैरेट या कोई भी पक्षी होता है तो उसको पिंजड़े में रखा जाता है कि भाग न जाए। तो मन भी हमारा पक्षी की तरह भागते रहता है, इधर ये डाली पर वो डाली पर से भागते रहता है। चंचलम ही मन, मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है। कोई चतुर व्यक्ति कृष्ण के चरण कमल रूपी पिंजड़े में बांध दे खूब अच्छा से तो नहीं भांगेगा। क्यों बांधना चाहता है? कि प्रायः प्रयाण समय कफवात पित्त, प्रायः मृत्यु के समय व्यक्ति लोग कोमा में चले जाते हैं, गला कफ से भर जाता है, शरीर टेम्परेचर से इतना हाई टेम्परेचर में हो जाता है कि कुछ बोल नहीं पाता है। जीव पर भगवान का नाम आएगा कि नहीं आएगा क्या भरोसा है? इस समय अगर आप कृष्ण भावना है और मृत्यु सामने खड़ी हो तो ऐसी मृत्यु को गले लगाना श्रेयस्कर है। वृत्रासुर के अनुसार वृत्रासुर श्रेष्ठ मृत्यु को वरण करने जा रहे हैं। जो वास्तव में मृत्यु नहीं है वही एक जीवन है। भक्तों की मृत्यु नहीं होती है बल्कि उनका जीवन का और प्रोग्रेस होता है, उनको और उच्च जीवन ज्योति प्राप्त होता है, भगवान के धाम में जाते हैं। अगर किसी को मान लीजिए कोई झोपड़ी में रहता है, कोई बंगलो मिलने वाला है तो खुशी होता है। वृत्रासुर असुर ज्योति से भगवत धाम जाने वाले हैं इसलिए उनको मरने का भय नहीं था, उनकी प्रोन्नति होने वाली थी, प्रोग्रेस होने वाला था। अगर मान लीजिए कोई चपरासी है उसको ऑफिसर का प्रोन्नति हो रहा है तो खुश होगा वो। कोई असुर ज्योनि से भगवान का पार्षद बनने वाला है, वृत्रासुर अगले अथु में पार्षद बनेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह के कृष्ण भावना अगर किसी को प्राप्त हो, कृष्ण में जिसकी मति हो, तो बहुत सुंदर है। एक और उदाहरण, जब भगवान श्री राम जंगल में जा रहे थे तो सीता जी भी वन में जाना चाहते थे। सीता जी ने कहा कि जहां राम है वहीं अवध है, जहां राम नहीं है तो अवध नहीं है, तो हमारे लिए वन ही अयोध्या है, वही हमारे लिए कनक भवन है। तो सीता जी वन में जा रही थी, जाने से पहले अपने सास के पास जाती हैं आशीर्वाद लेने के लिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं वन में श्री राम के साथ जाना चाहती हूं। तो उनके जो चरण में जो नूपुर था, आध्यात्मिक जगत का हर चीज जो है जीवंत तो होता है, सजीव होता है, ज्ञानमय, आनंदमय, चिन्हमय, हर चीज, आभूषण भी, मुकुट भी, पीताम्बर भी, बांसुरी भी, माला भी, सब कुछ सजीव होता है। तो सीता जी के चरण में जो नूपुर था वो झुनझुन झुनझुन बज रहा था, नूपुर मधुर कवि बरनी। कवियों ने वर्णन किया है कि सीता के चरण में जो नूपुर था इतना सुंदर ध्वनि कर रहा था और कह रहा था कि हे सीते, आप मुझे अपने चरणों से निकालना मत, आप वन में जा रही हैं तो मुझे भी साथ में ले जाना, क्योंकि आप, मैं सीताराम के दर्शन से वंचित न हूं, आप मुझे अपने चरणों में ही लगाए रखना, आपके चरणों से अगर मैं त्याग दिया जाऊंगा तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो भक्त हमेशा भगवान सीताराम राधा कृष्ण के चरणों से युक्त होकर के रहना चाहते हैं। जो वियुक्त हो, जो चरणों से दूर हो जाता है, जो राधा कृष्ण के चरणाम्बुज से वंचित हो जाता है, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो मानो नूपुर कह रहा है कि हे सीते, मुझे अपने चरण में ही लगाए रखना। उसी तरह से वृत्रासुर भगवान में अपने मन को लगा चुके थे बिल्कुल। इसलिए उनको और कोई कामना नहीं थी, न नाक पृष्ठम, न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न जोग सिद्धि, न पुनर्भवम, समंजसम त्वाम विरह आकांक्षे। कोई आकांक्षा नहीं थी। जब भगवत धाम जाने वाला है कोई व्यक्ति, तो उसको इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन है? किसी को बड़ा चीज मिलने वाला है, तो किसी को मान लीजिए BMW कार मिलने वाला, तो बाइसिकल की क्यों परवाह करेगा? कोई कहेगा बाइसिकल फेंक दो तो मैं BMW कार देता हूं, कहेगा नहीं नहीं हम सरकार बाइसिकल नहीं फेंकूंगा, आपको देना है तो दीजिए नहीं तो जाइए। अरे बाइसिकल में क्या रखा है? न ना कपृष्ठम, न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम। क्यों इतना बड़ा त्याग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भगवान का धाम मिलने वाला है। न नाक पृष्ठम, जो नाक के पृष्ठ पर है स्वर्ग, नाक पृष्ठम, न सार्वभौमम, न उनको ब्रह्मलोक की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न रसातल के सुख की कामना है, रसाधिपत्यम, न जोग सिद्धि, कोई सिद्धि की भी कामना नहीं है, न पुनर्भवम, पुनर्भव कि फिर पुनर्जन्म न हो, कोई कहीं कामना है, क्योंकि भगवान से मिलना चाहते थे। जो भगवान को, भगवान के भक्त भगवान से मिलना चाहते, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि अजात पक्षा युवमातरम खगा अस्तन्यम यथा बस सतरा क्षुधार था। जीव कब सुखी होता है? भगवान से मिल करके। नदियों का आश्रय क्या है? समुद्र। जो नदियां समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका जीवन अचल हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में नदी तालाब सूख जाते हैं प्रायः। सुखी जीव वही है जो भगवान के शरण में है। जिमी हरि शरण ने एक को बाधा, भगवान के शरण में एक भी बाधा नहीं है। जैसे छोटी छोटे तालाब में जो मछलियां रहती हैं वो मर जाती हैं ग्रीष्म ऋतु में, जो समुद्र में है अथाह जल में है। इसलिए वृत्रासुर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, केवल भगवान चाहिए। जैसे चेतन महाप्रभु कहते हैं ना, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि, अहेतुकी भाव से वृत्रासुर देखिए कितना। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वृत्रासुर महान योद्धा और महान भक्त थे, एक भक्त भी थे एक योद्धा भी थे। इस तरह से वृत्रासुर बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। समय समाप्त हो चुका है, यहीं हम भी समाप्त कर रहे हैं। आगे की बात को अब आगे सुनेंगे, जो पीछे की बात बीत गई है उसमें कोई गलती होगा तो निकाल लीजिएगा सूप की तरह, और जो सार होगा ग्रहण कर लीजिएगा। साधु सूप की तरह होते हैं, सूप जो है कचड़े को फेंक देता है और सार को रख लेता है। तो आप लोग सूप की तरह हैं और मैं चलनी की तरह हूं। चलनी जो है सार को निकाल देता है और कचड़े को छान लेता है। चलनी का गुण क्या होता है, झरना, आटा को नीचे कर देता है और जो कीड़े मकोड़े कंकड़ पत्थर को अपने अंदर रख लेता है। तो हम चलनी की तरह हैं, आप लोग सूप की तरह हैं। आप लोग सार को ग्रहण कर लेंगे और जो उसमें असार होगा उसको त्याग देंगे। चलनी और सूप, चलनी को देखें ना आप लोग, झरना वो कचड़ा को रख लेता है, लेकिन आप लोग सूप स्वभाव सूप की तरह हैं। धन्यवाद। एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रश्न है? ठीक है। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, राधारास बिहारी की, गौर निताई की।